मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। उसके माँ का नाम माहम सुल्ताना था। उसके छोटे भाई कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम से तथा सबसे छोटा हिंदाल दिलदार बेगम से उत्पन्न बाबर की संतान थे। हुमायूं की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था, जिनमें संकीर्ण सैनिक शिक्षा प्रमुख थी। पानीपत के प्रथम युद्ध और खानवा के युद्ध में भाग लेने के अतिरिक्त हुमायूं ने अन्य कई स्थानों पर अफगानों से संघर्ष करके अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। हिसार, फिरोजा, बदख्शां और संभल की अपनी जागीरों को देखभाल करते हुए भी उसने युद्ध और शासन का अनुभव प्राप्त किया। अपने मृत्यु के अवसर पर बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली मुहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझा और उसके स्थान पर बाबर के बहनोई तथा बेगम खानजादा की पति मेहदी ख्वाजा की गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न किया। मेहदी ख्वाजा प्राय 20 वर्ष की आयु से बाबर की सेवा में था, परंतु बाद में अपने जीवन के खतरे को समझकर उसने यह विचार त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन किया। 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हुई और 4 दिन के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बिना किसी विरोध के 23 वर्ष की आयु में हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठा। पहला, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां। अपने शासन के आरंभ से ही हुमायूं को विभिन्न कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा। हुमायूं को कुछ कठिनाइयां अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई और कुछ उसके संबंधी मिर्जाओं और भाइयों ने खड़ी की, लेकिन उसके सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो उस समय भी मुगल वंश को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। इन कठिनाइयों के साथ साथ हुमायूं का अपना व्यक्तिगत चरित्र भी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। बाबर की विरासत। निसंदेह बाबर ने हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा था, परंतु वह उस साम्राज्य की जड़ों को दृढ़ न कर सका था। बाबर अपने साम्राज्य को संगठित करने और उसकी उचित शासन व्यवस्था करने में सफल नहीं हुआ था। मेल्सन ने लिखा है, जब उसकी कोष्टक में बाबर मृत्यु हुई तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की भांति मुगल राजवंश की जड़ें भी भारतीय भूमि में जम नहीं सकी थी। बाबर ने दिल्ली और आगरा में प्राप्त हुए खजानों को बांट दिया था। उसने अन्य अवसरों पर भी ऐसी ही उदारता का परिचय दिया था, जबकि वह राज्य की आय के साधनों में वृद्धि न कर सका था। अपने समय में स्वयं बिहार बाबर ने आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव किया और हुमायूं को ये कठिनाइयां विरासत के रूप में मिली। बाबर द्वारा हुमायूं को अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने हेतु दी गई सलाह भी हुमायूं के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। हुमायूं के तीन छोटे भाई अयोग्य और बेवफा सिद्ध हुए। जब मुगल वंश को एकता की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, अधिकारों और महत्वाकांक्षाओं पर बल दिया। जब उनके भाई को उनकी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता हुई, तभी वे उसके विरोध में खड़े हुए अथवा उसकी तरफ से उदासीन हो गए। उनमें से प्रत्येक हुमायूं की कठिनाइयों में वृद्धि करने वाला सिद्ध हुआ। तीसरा, मिर्जा वर्ग और उसके संबंधी। मुगल राजवंश से संबंधित विभिन्न चगताई तुर्क बड़ी बड़ी जागीरों को प्राप्त करके महत्वाकांक्षी हो गए थे। उनमें से कुछ ने मुख्यतया हुमायूं के संबंधियों ने राजसिंहासन को प्राप्त करने की लालसा की। बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा ने बाबर की मृत्यु पर सिंहासन को अपने अधिकार में करने का स्वप्न देखा था। यद्यपि वह सफल न हो सका, हुमायूं के दो अन्य निकटतम संबंधियों मुहम्मद जमान मिर्जा और मुहम्मद सुल्तान मिर्जा ने समय समय पर हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किए और उसके शत्रुओं का साथ दिया। वे हुमायूं के सहायक न होकर उसके शत्रु सिद्ध हुए। चौथा, अफगान। हुमायूं के सबसे प्रबल एवं प्रमुख शत्रु अफगान थे।
वे यह नहीं भूल सके थे कि कुछ वर्षों पहले ही दिल्ली पर उनका आधिपत्य था। इस कारण उनमें से कई दिल्ली को अफगानों के आधिपत्य में करने का स्वप्न देखते थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भागकर बिहार चला गया था, जहां सभी विद्रोही अफगान सरदार एकत्रित हो रहे थे। बंगाल का शासक खुले तौर से उनकी सहायता कर रहा था। गुजरात का शासक बहादुर शाह न केवल जवान था, बल्कि शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी भी था। उसके पास एक बड़ी सेना, एक अच्छा तोपखाना और गुजरात जैसे धनाढ़े सूबे की आर्थिक शक्ति थी। मालवा कूश ने जीत लिया था और राजस्थान पर उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। फतेह खां, कुतुब खां, आलम खां लोदी जैसे अफगान उसके यहां संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। शेर खां और बंगाल के शासक से उसका पत्र व्यवहार था। हुमायूं का प्रत्येक शत्रु और विद्रोही बहादुर शाह से सहायता और संरक्षण की आशा करता था। अफगानों में से एक अफगान सरदार शेर खां धीरे धीरे दक्षिणी बिहार में अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। आरंभ में तो नहीं, परंतु कुछ समय पश्चात वही हुमायूं का सबसे कट्टर, योग्य और शक्तिशाली शत्रु सिद्ध हुआ। 5. सेना का राष्ट्रीय स्वरूप न होना। मुगलों की सेना राष्ट्रीय न थी। उसमें उज्बेक, मुगल, तुर्क, ईरानी, अफगान, भारतीय आदि सम्मिलित थे, जो अपनी ही जाति के सरदारों के अधीनता में थे। ऐसी सेना में एकता के स्थान पर ईर्ष्या और द्वेष की संभावना अधिक थी। ऐसी सेना केवल बाबर सदृश प्रभावशाली सेनापति के नेतृत्व में ही उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। अन्यथा योग्य सेनापतित्व के अभाव में वह दुर्बल थी। हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं। मुगल साम्राज्य जब इतने संकटों से घिरा हुआ था, तब उसे एक कठोर, अनुशासन प्रिय और योग्य सेनापति शासक की आवश्यकता थी, और हुमायूं में इन गुणों का सर्वदा अभाव था। हुमायूं साहसी होते हुए भी योग्य सेनापति न था और बुद्धिमान होते हुए भी नीतिज्ञ न था। उसमें परिस्थितियों को ठीक तरह समझने की योग्यता न थी। उसमें दृढ़ता और निरंतर प्रयत्न करते रहने की शक्ति का अभाव था, और उसमें नेतृत्व करने की योग्यता न थी। हुमायूं की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी अत्यधिक उदारता थी। लेन पुल ने लिखा है, हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। इस कारण हुमायूं के चरित्र के कुछ दोष भी उसकी प्रमुख कठिनाइयां थी। 7. हुमायूं का साम्राज्य विभाजन। हुमायूं ने अपने भाइयों को विस्तृत भूप्रदेश दिए। आरंभ में ही उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को काबुल तथा कंधार प्रदान किए। बाद में उसने कामरान को पंजाब और हिसार फिरोजा पर भी अधिकार कर लेने दिया। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार यह हुमायूं की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि जब मुगल राज्य को एकता की आवश्यकता थी, हुमायूं ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। परंतु डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार यह कार्य हुमायूं को प्राचीन तुर्क मंगोल परंपरा के कारण बाध्य होकर करना पड़ा था। यदि वह ऐसा ना करता तो चारों भाइयों में गृह युद्ध की संभावना थी। इस बंटवारे का कारण चाहे हुमायूं की उदारता हो और चाहे उसकी बाध्यता, परंतु एक भूल हुमायूं ने अवश्य की थी। उसे कामरान को अपने उत्तर पश्चिम के प्रदेश को नहीं देने चाहिए थे, जहां से मुगल सेना को अच्छे सैनिक प्राप्त होते थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, ये सुविधाएं देना हुमायूं की भूल थी, क्योंकि उसने उसे अफगान पहाड़ियों के दूसरी तरफ के भूक्षेत्रों से पृथक कर दिया। कामरान के हाथों में हिसार फिरोजा के चले जाने से दिल्ली कंधार की मुख्य सड़क पर उसका अधिकार हो गया। दूसरा, कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न और अफगानों से संघर्ष। पहला, कालिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी। सिंहासन पर बैठने के कुछ माह पश्चात ही हुमायूं को संघर्ष में फंसना पड़ा। उसका मुख्य शत्रु अफगान थे और उन्हीं से उसका संघर्ष प्रारंभ हुआ। कालिंजर पर आक्रमण उस संघर्ष की एक कड़ी थी। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के बारे में यह अनुमान किया गया था कि वह अफगानों के प्रति सहानुभूति रखता था। इस अवसर पर वह कालपी पर अपना दबाव बढ़ा रहा था। यह हुमायूं के लिए हानिकारक था, क्योंकि कालपी मालवा और यमुना की घाटी को मिलाने वाला स्थान था। विरोधी बादशाह के हाथों में होने से वह मुगल बादशाह के लिए संकट उपस्थित कर सकता था। यदि प्रताप रुद्रदेव के अधिकार में कालपी चला जाता और वह गुजरात के शासक बहादुर शाह के पक्ष में हो जाता तो हुमायूं को बहुत कठिनाइयां होती। इस कारण मूलतया बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए हुमायूं को कालिंजर पर आक्रमण करने की आवश्यकता अनुभव हुई। 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर का किला एक पहाड़ी पर कई सौ फुट की ऊंचाई पर बना हुआ एक दृढ़ किला था। वह सर्वदा से तुर्कों और राजपूतों के बीच युद्ध का कारण बना हुआ था। उसे जीतना सरल कार्य न था। जब हुमायूं किले का घेरा डाले हुए था, उसे सूचना मिली कि महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान बिहार से आगे बढ़कर जौनपुर की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। इससे पहले शेर खान ने चलहाकी से चुनार के दृढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। अफगानों की यह कार्रवाई हुमायूं के लिए ज्यादा खतरनाक थी। इस कारण कालिंजर के राजा से धन और सैनिक की क्षतिपूर्ति लेकर और उससे एक संधि करके हुमायूं वापस चला आया। दूसरा, दोहरिया का युद्ध और चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी। उस समय तक अफगानों ने महमूद लोदी के नेतृत्व में जौनपुर तक अपना अधिकार कर लिया था और अवध में अपनी शक्ति को दृढ़ कर रहे थे। हुमायूं जब अपनी सेना के साथ उधर पहुंचा तो दोहरिया नामक स्थान पर अफगानों ने उसका मुकाबला किया। शेर खान ने उस समय महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया। अफगानों ने बहादुरी से मुगलों का मुकाबला किया, परंतु उनकी पराजय हुई। महमूद लोदी भाग गया और इसके पश्चात राजनीति से पृथक हो गया। इसके उपरांत हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला। चुनार का किला न केवल दृढ़ था बल्कि महत्वपूर्ण भी था। हुमायूं ने उसे शेर खां के हाथों से छीनने का प्रयत्न किया। 4 माह के घेरे के पश्चात भी किले को जीतने की कोई आशा दिखाई न दी। इस बीच में गुजरात के शासक बहादुर शाह का दबाव राजस्थान पर बढ़ गया। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने शेर खां से समझौता कर लिया, किला शेर खां के आधिपत्य को छोड़ दिया, परंतु शेर खां ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और अपने लड़के कुतुब खां के नेतृत्व में एक सेना हुमायूं की सेवा में छोड़ दी। हुमायूं आगरा वापस आ गया, जहां उसने करीब 1.5 वर्ष ऐसो आराम में व्यतीत किया और बहुत सा धन दीन पनाह नामक एक किले के निर्माण में खर्च किया। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार यह किला और नगर कामरान और बहादुर शाह की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए शिक्षा की सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था, परंतु इसमें संदेह नहीं कि यदि हुमायूं इस धन का समय और समय का उपयोग बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति के लिए करता तो अधिक उचित था। इसी अवसर पर 1534 ईस्वी मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ने मिलकर बिहार में विद्रोह किया। वे असफल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। यद्यपि बाद में वे कैद से भाग गए। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 ईस्वी से 1536 ईस्वी। उस समय तक गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। दक्षिण भारत के कई राजाओं ने उससे संधियां कर ली थी। 1531 ईस्वी में वह मालवा को जीत चुका था। 1532 ईस्वी में उसने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया और 1533 ईस्वी में उसने मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य किया था। तुर्की के एक प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था। दिल्ली को जीतना उसकी एक महत्वाकांक्षा थी। बंगाल के शासक और बिहार के शेर खां से उसका पत्र व्यवहार था। हुमायूं के सभी शत्रुओं को उसने शरण दी थी और उस अवसर पर मोहम्मद जमान मिर्जा को भी उसने शरण दी थी तथा हुमायूं द्वारा उसे वापस मांगने पर लौटाने से इनकार कर दिया। उस अवसर पर शेर खां ने न केवल दक्षिण बिहार का वास्तविक मालिक बन बैठा बल्कि वह बंगाल को भी अपने अधिकार में करने के लिए प्रयत्नशील था। सूरजगढ़ के युद्ध 1534 ईस्वी में बंगाल की सेना को परास्त करने के कारण उसके सम्मान और शक्ति में वृद्धि हुई थी और विभिन्न अफगान सरदार उसके नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे। हुमायूं को शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति चुनौती दे सकती थी, परंतु गुजरात का शासक बहादुर शाह उसे चुनौती दे रहा था। हुमायूं ने बहादुर शाह से निर्णयात्मक युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी सेना के साथ मालवा में प्रवेश किया। उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के किले का घेरा डाले हुए था। उस अवसर पर चित्तौड़ का शासक राणा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमाजीत था। उस कठिनाई के अवसर पर उसकी मां और राजमाता कर्णवती ने संभवतया राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, जबकि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की कि वह उस समय तक उस पर आक्रमण न करे जब तक कि वह काफिरों के विरुद्ध जिहाद में व्यस्त था। हुमायूं ने धर्म के नाम पर की गई बहादुर शाह की प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु धीरे धीरे चित्तौड़ की तरफ बढ़ता रहा और जनवरी 1535 ईस्वी में सारंगपुर पहुंच गया। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार धर्म के अतिरिक्त हुमायूं के सारंगपुर में रुक जाने के कुछ अन्य कारण थे। हुमायूं बहादुर शाह का मुकाबला करने के लिए पहले अपनी सेना को व्यवस्थित करना चाहता था और मालवा में बहादुर शाह के विरोधी तत्वों को अपनी तरफ करने के लिए उसे समय की आवश्यकता थी। हुमायूं बहादुर शाह के दक्षिण भारत के मित्र राज्यों से संकित था। वह ऐसी स्थान भी चाहता था जहां से वह माडू या अहमदाबाद से बहादुर शाह के लिए आने वाली सहायता को रोक सके और बहादुर शाह के वापस जाने के मार्ग को बंद कर सके। आलम खान लोदी कालिंजर की तरफ भाग गया था। यह संभव था कि वह हुमायूं पर पीछे से आक्रमण कर देता। उपर्युक्त कारणों से हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं किया और प्रतीक्षा की। 10 दिन के पश्चात बहादुर शाह के तोपखाने के मुकाबले चित्तौड़ का किला झुक गया। बहादुर शाह ने 3 दिन तक वहां लूट मार की। चित्तौड़ के पतन का समाचार प्राप्त होते ही हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर के निकट पहुंच गया। बहादुर शाह की विजयी सेना हुमायूं के मुकाबले में आई, परंतु बहादुर शाह ने रूमी खां की सलाह और अपने तोपखाने पर विश्वास करते हुए रक्षात्मक नीति अपनाई और हुमायूं पर तुरंत आक्रमण नहीं किया। हुमायूं ने अपनी सेना को गुजराती सेना की तोपों से दूर रखा और उसकी रफत के मार्ग को बंद कर दिया। बहादुर शाह की सेना अपने ही जाल में फंस गई। अकर्मण्यता और भूखमरी ने उसके साहस और आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया। एक रात अपने तोपखाने और अन्य बहुत सी वस्तुओं को बर्बाद करके या छोड़ के बहादुर शाह मांडू की तरफ भाग गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया। बहादुर शाह मांडू से चंपानेर, चंपानेर से कांबे और कांबे से ड्यू भाग गया। हुमायूं ने कांबे तक उसका पीछा किया, परंतु वहां से चंपानेर के दुर्ग को जीतने के लिए वापस आ गया। चंपानेर का दुर्ग बहुत सुरक्षित और मजबूत था। वहां अच्छा तोपखाना और भरपूर रसद थी। गुप्त मार्ग से वह रसद वहां पहुंच रही थी। हुमायूं ने उस स्थान को खोज निकाला जहां से किले की दीवार केवल 60 या 70 फीट ऊंची थी और उसमें किले ठोक कर उसने स्वयं अपने लगभग 300 सैनिकों को लेकर अचानक आक्रमण कर दिया। किलेदार इख्तियार खां को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हुमायूं को वहां बहुत धन प्राप्त हुआ जिसे उसने अपने सरदारों और सैनिकों में उदारता से बांटा। उस समय तक प्रायः संपूर्ण मालवा और गुजरात हुमायूं के अधिकार में जा चुका था। मांडू और चंपानेर के किले की विजयें हुमायूं की महान विजय थी। अपने भाई अस्करी को गुजरात का सूबेदार बनाकर और हिंदू बेग को उसकी सहायता के लिए छोड़कर हुमायूं मालवा चला गया। अस्करी गुजरात में ठीक व्यवस्था न कर सका, बल्कि मुगल सैनिकों और सरदारों के व्यवहार से वहां के नागरिक असंतुष्ट हो गए। इससे बहादुर शाह को एक बड़े अधिकारी इमाद उल मुल्क को एक बड़ी सेना एकत्रित करने का अवसर मिला। बहादुर शाह भी गुजरात वापस आ गया। अस्करी ने अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्रित करने का अवसर मिला। बहादुर शाह भी गुजरात वापस आ गया। अस्करी ने अपनी बिखरी हुई सेना को अहमदाबाद में एकत्रित कर लिया। छूटपूट युद्ध के पश्चात मुगल सेना ने चंपानेर के दुर्ग से में लौटना ठीक समझा। एक प्रकार से यह संपूर्ण गुजरात का खोना था, परंतु इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग न था। चंपानेर के दुर्ग रक्षक तारती बेग ने अस्करी का सम्मान तो किया, परंतु न तो उसे किले में शरण दी और न हुमायूं की आज्ञा के बिना उसे सहायता देना स्वीकार किया। तारती बेग अस्करी से संकित हो गया था। अस्करी ने अपना सेना को लेकर आगरा की ओर बढ़ना आरंभ किया। तारदी बेग स्वयं भी किले की रक्षा न कर सका। जब बहादुर शाह ने किले पर आक्रमण किया तब तारदी बेग मांडू चला गया। हुमायूं को तारदी बेग ने सूचना दी कि संभवतया अस्करी आगरा पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हुमायूं भी मांडू को छोड़कर आगरा की तरफ चल दिया। दोनों भाइयों की मार्ग में भेंट हुई और हुमायूं की शंकाएं समाप्त हो गई। हुमायूं ने अस्करी और हिंदू बेग आदि सभी को उदारता से माफ कर दिया। हुमायूं के मांडू को छोड़ते ही मालवा भी मुगलों के हाथ से निकल गया। मल्लू खां ने शीघ्र ही मांडू को जीत लिया और बहादुर शाह के नाम से संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार एक ही वर्ष में मुगलों ने संपूर्ण गुजरात और मालवा को विजय किया और उसे खो भी दिया। बहादुर शाह पुनः वहां का स्वामी बन गया। यद्यपि बहुत समय तक वह उस सत्ता का उपभोग न कर सका क्योंकि फरवरी 1537 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अस्करी की अयोग्यता, उसकी स्वतंत्रता की इच्छा, अनुभवहीन अधिकारियों की नियुक्ति और हुमायूं का विजय के पश्चात स्वयं के शासन की देखभाल में के स्थान पर ऐसो आराम में लिप्त हो जाना मुगलों की इस बड़ी हानि के कारण थे। इस हानि के बारे में लेन पुल ने लिखा है, मालवा और गुजरात के सूबे जो हुमायूं के शेष संपूर्ण साम्राज्य के बराबर थे, एक पके फल की भांति उसके हाथों में आ गिरे थे। कोई भी विजय इतनी सरल नहीं हो सकती थी। साथ ही साथ कोई भी विजय इतनी लापरवाही से नष्ट नहीं की गई थी। शेर खां से संघर्ष 1537 से 1540। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था, शेर खां बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति को दृढ़ कर रहा था। दक्षिणी बिहार उसके आधिपत्य में आ चुका था। उसका लड़का कुतुब खां हुमायूं की सेना को छोड़कर सुरक्षित वापस पहुंच गया था और विभिन्न अफगान सरदार उसके नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे। शेर खां ने बंगाल की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाया। नुसरत शाह की मृत्यु हो चुकी थी और महमूद शाह योग्य शासक सिद्ध नहीं हुआ था। 1536 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ को घेर लिया। दुर्बल महमूद शाह ने 13 लाख दिनार देकर शेर खां से संधि कर ली। हुमायूं ने शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति की ओर उस समय तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसे यह सूचना नहीं मिल गई कि शेर खां ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर पुनः आक्रमण 1537 ईस्वी में कर दिया है। चुनार गढ़ की विजय 1538 ईस्वी। जुलाई 1537 ईस्वी में हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा। अक्टूबर में उसने चुनारगढ़ का घेरा डाला जहां कुतुब खां ने शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोकने का निश्चय कर रखा था। 6 माह के पश्चात मार्च 1538 ईस्वी में चालाकी और तोपखाने की सहायता से किले पर अधिकार किया जा सका। उस समय तक शेर खां ने गौड़ को जीत लिया था और उसके खजाने को लूटकर रोहतास गढ़ किले में सुरक्षित रख दिया था। चुनार को जीतने में जो समय हुमायूं ने लगाया वह उसकी एक बड़ी भूल मानी गई है। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी भी यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि चुनार को अफगानों के हाथ में छोड़कर बंगाल की ओर बढ़ जाना हुमायूं के लिए उपयुक्त न था, परंतु अपनी संपूर्ण सेना को लेकर चुनार के किले के सामने पड़ा रहना भी एक भूल थी, जिसके कारण शेर खां अपनी बंगाल विजय को सरलता से पूर्ण कर सका। बंगाल की विजय। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं बनारस में रुका। वहां उसने शेर खां से संधि की बातचीत आरंभ की। यह निश्चय हुआ कि बिहार हुमायूं को और मुगलों की अधीनता में बंगाल शेर खां को दे दिया जाएगा, जिसके बदले में शेर खां हुमायूं को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपया देगा। शेर खां ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया, परंतु उसी समय बंगाल के महाशासक महमूद शाह की एक राजदूत ने आकर हुमायूं से अपने सुल्तान के लिए सहायता मांगी और बंगाल पर आक्रमण करने की प्रार्थना की। हुमायूं ने बंगाल की ओर बढ़ने का निश्चय किया। शेर खां ने अपने हुमायूं के अपने वायदों को तोड़ने का लाभ उठाया। उसने अफगानों की यह विश्वास दिला दिया कि मुगल अफगानों का सर्वनाश करना चाहते हैं, मुगलों से की गई संधि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हुमायूं के रास्ते में शेर खां के पुत्र जलाल खां ने बाधा डाला, परंतु उसका उद्देश्य हुमायूं से युद्ध करना न था, बल्कि थोड़े समय तक उसको रोके रखना था। इस कार्य की पूर्ति के पश्चात जलाल खां अपने पिता के पास चला गया। उसके पश्चात हुमायूं को गौड़ का मार्ग साफ मिल गया। शेर खां और उसकी सेना पहले ही बंगाल छोड़ चुके थे। सुल्तान महमूद की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पुत्रों का वध कर दिया गया था। इस कारण बंगाल पर हुमायूं ने सरलता से अधिकार कर लिया। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार हुमायूं ने 8 महीने बंगाल में ऐशो आराम किया। दिल्ली, आगरा या बनारस तक अपना संपर्क नहीं रखा। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार हुमायूं ने उस समय बंगाल में व्यवस्था स्थापित की और अपनी सेना का पुनर्गठन किया। स्थिति दोनों में से कोई भी रही हो, परंतु जो समय हुमायूं ने बंगाल में नष्ट किया, शेर खां उसी का सदुपयोग किया। उस समय में अफगानों ने बनारस, कड़ा, कन्नौज, संभल आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया, जौनपुर और चुनारगढ़ को घेर लिया तथा इस प्रकार हुमायूं के वापस लौटने के मार्ग को बंद कर दिया। कई माह पश्चात हुमायूं को ये सूचनाएं प्राप्त हुई और साथ में यह भी ज्ञात हुआ कि उसके भाई हिंदाल ने उसके विश्वासपात्र शेख बहलोल का वध कर दिया है। आगरा में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर ये सूचनाएं मिलते ही हुमायूं ने वापस लौटने का निर्णय किया। बंगाल में जहांगीर कुली बेग को केवल 5,000 सैनिकों के साथ छोड़कर मार्च 1539 ईस्वी में हुमायूं गौड़ से चला। चौसा का युद्ध। 27 जून 1539 ईस्वी। वापस आने के लिए हुमायूं ने गंगा का दक्षिणी तट चुना और मुख्य सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड से वापस लौटा। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार यह हुमायूं की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि इस भाग पर अफगानों का अधिकार था। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार यह रास्ता ठीक था, क्योंकि मुगल सेना इसी मार्ग से बंगाल गई थी और इससे परिचित थी। यह मार्ग हुमायूं को चुनारगढ़ ले जाता, जहां मुगल सेना उस समय भी अफगानों की मुकाबला कर रही थी। उस मार्ग से आगे बढ़ते हुए हुमायूं ने एक बार फिर गंगा को पार किया और उसके उत्तरी तट पर चला गया, जहां चौसा का मैदान था। शेर का भी अपनी सेनाओं को लेकर उसी स्थान पर पहुंच गया। हुमायूं को अपने भाइयों से कोई सहायता न मिली, न उसकी सेना व्यवस्थित थी। शेर खां बरसा की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मुगल सेना गंगा और कर्मनासा नदियों के बीच में थी और वह भाग नीचा था, जिससे पानी वर्षा का पानी आने पर उन नदियों में बाढ़ आ सकती थी तथा मुगल सेना कठिनाई में फंस सकती थी। 3 महीनों तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रहीं। उस समय संधि की बातचीत हुई, परंतु उसका कोई लाभ न निकला। वर्षा के आरंभ होते ही मुगलों की सेना में कठिनाई होने लगी। ऐसे समय में 26 जून को प्रातःकाल अंधेरे में ही शेर खान ने अचानक मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। मुगलों में भगदड़ मच गई। वह बड़ी संख्या में मारे गए अथवा भाग गए। हुमायूं बड़ी कठिनाई से एक भिश्ती की सहायता लेकर गंगा पार कर सका। हुमायूं और अस्करी आगरा चले गए। शेर खान ने मुगल बेगमों और स्त्रियों को सम्मान सहित वापस भेज दिया। शेर खान इस युद्ध के पश्चात अपने को सुल्तान घोषित किया और शेर खान की उपाधि ग्रहण की।